Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और उसके बाद फिर आत्म सिद्धि के लिए प्रयत्न किया. हाँ, वो पुस्तक पढ़ने जैसी पुस्तक है. साधक का जीवन आपको साधना काल में देखना चाहिए. आप बाबा के सिद्धि काल के जीवन पर ज्यादा दृष्टिपात मत करो. आप बाबा का जो साधक का जो जीवन है ना, वो देखो. अखंडानंद जी महाराज श्री का आप जीवन देखना, साधक का जीवन, सिद्धि अवस्था का जीवन आप देखेंगे ना, तो आपको ऐश्वर्य मालूम पड़ेगा. वहां भोग मालूम पड़ेगा. वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाई देगी. आपका आकर्षण उसके प्रति होगा. उड़िया बाबा जी महाराज श्री को कहा करते थे कि तुम हरिद्वार मत जान. बोले, हरिद्वार जाओगे तो तुम्हारे मन में मंडलेश्वर बनने की इच्छा हो जाए. बोले, वहां जाओगे तो तुमको लगेगा कि मैं भी मंडलेश्वर बनूंगा. क्यों? क्योंकि वहां त्याग आपको थोड़ी दिख रहा है, आपको ऐश्वर्य दिख रहा है. और जहां ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, आदमी ऐश्वर्य की तरफ झुक जाता है. और वो ऐश्वर्य सिद्धि अवस्था का है, साधन अवस्था का थोड़ी है. आप जो मंडलेश्वर बने, जो सिद्ध महापुरुष बने, उनके प्रारंभिक जीवन को आप देखना. बहुत कठिन है हमारा जीवन. साधक का जीवन वैराग्य का जीवन है. इसलिए बाबा जी कहते थे कि वहां मत जाना, क्योंकि वैराग्य बाबा के जीवन में वैराग्य है. और वो चाहते कि साधक के जीवन में भी वैराग्य बना रहे. वैराग्य के बिना ये सारी चीजें संभव नहीं. शिवानंद जी महाराज जी में पूर्ण वैराग्य हो गए. और वो जब दवाएं देते थे ना महात्माओं को, तो महात्माओं ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, ये साधु का काम दवा देना नहीं है. बोले, साधु का काम भजन करना. आप कल्पना करो कि उस समय ऋषिकेश में कैसे साधु रहा करते होंगे. माने साधु किसी को दवा दे रहा है, वो भी समझते थे कि साधुता से नीचे गिरना है. आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. जब शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश में गए और वो भजन साधना करते थे, और अन्य समय में साधुओं को दवा देते थे, और वो साधुओं ने देखा और उन्होंने कहा कि तो पतित हो गया है. बोले, तो दवा दे रहा है. और आजकल हम क्या देते हैं, क्या नहीं देते, क्या नहीं करते. उस समय इतने उच्च कोटि के साधु, उनको लगता था कि ये औषधियां दूसरे को दे रहा है, ये नीचे गिर गया, ये इसकी साधना नहीं बन पा रही, इसको भजन करना चाहिए, इसको साधना करना, वैराग्य में रहना चाहिए. महाराज, जब 84 में हम गए, 84 में ऋषिकेश में, वो ऋषिकेश अवराज में जैवन स्मान कांतर, परिस्थिति भी आदमी के जीवन में वैराग्य निर्मित करती है. वैसे समझ भी, विवेक भी अपने आप वैराग्य को निर्मित करता है. और आज बालक नचिकेता के जीवन का जो वैराग्य है ना, ये परिस्थिति जन्य वैराग्य नहीं है, ये विवेक जन्य वैराग्य अपने आप. और ये वैराग्य केवल कहने के लिए नहीं है. यहां दोनों चीजें हैं, अभिव्यक्ति और जीवन. बालक नचिकेता के जीवन में वैराग्य की अभिव्यक्ति भी है और वैराग्य का जीवन भी है. नहीं तो आदमी कहने के लिए कहता है. आदमी कहता तो है, लेकिन वो बात उसके जीवन में थोड़ी होती है. और यहां बालक नचिकेता कह भी रहे हैं, और बालक नचिकेता के जीवन में वो वैराग्य है ही. इसलिए उन्होंने अपने वैराग्य परक वचन, ये श्लोक जो है ना, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है. आप जहां भी आप प्रवचन आदि में जाते हैं, ये अक्सर वैराग्य के प्रकरण में श्लोक आपको सुनाई देता है. बालक नचिकेता ने सबसे पहले श्लोक में शब्द का प्रयोग किया है, शोभावा. मर्त्यस्य यदंत कैतर, और संबोधित किया यद अंतक. आचार्य यम को यहां पर अंतक बोला है. अंतक, अंतक का मतलब होता अंत करने वाले. अंतक माने विनाशक, अंतक माने मृत्यु, मारने वाले, परिवर्तन के दृष्टा. आज एक संबोधन में अंतक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि आपको मालूम नहीं है क्या, ये दुनिया के सारे पदार्थ परिवर्तनशील हैं, मरणशील हैं, बदलने वाले, मिटने वाले हैं। और इसके दृष्टा कौन है? आप। इसको बदलने वाले, इसको मारने वाले कौन है? आप ही तो हैं। नारायण यहां तीन रूप माने जाते हैं, यम के तीन रूप। इसलिए यम को भगवान के रूप में भी प्रतिपादित किया है। और भगवान का अर्थ होता है जो उत्पत्ति जानता है, स्थिति जानता है, और जो विनाश को भी जानता है, उसको बोलते भगवान। आज आचार्य यम को कह रहे हैं कि आप अंतक हैं, आप विनाश के दृष्टा है, आपको क्या मालूम नहीं है ये सारी चीजें मरने वाली हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो स्मशान में रहता है हमेशा, और उसके सामने सैकड़ों शव जलते हैं। आप उसके लिए बताया जाएगा क्या कि आदमी मरता है, ये परिवर्तनशील है? अरे तो आपके तो सामने होती है घटनाएं। आज यही बात कहना चाह रहे हैं, आप अंतक, और ये सारी दुनिया जो है ना वो बिल्कुल नष्ट होने वाली है, स्वभाव। और इस स्वभाव शब्द का प्रयोग भी बड़ा गहरा है। स्व माने होता है कल, कल, और कल तक भी जिसकी स्थिति ना हो उसको बोलते स्वभाव, माने अत्यंत क्षणिक। भगवान ने 15वें अध्याय में ऐसी शब्द का प्रयोग किया, अश्वत्थम प्राहुरव्य। आप 15वें अध्याय के ऊर्ध्वमूला मदशाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम, भगवान ने कहा कि संसार रूपी वृक्ष को लोग कहते हैं सत्य है, अश्वत्थम प्राहु, अश्वत्थम, इसके दोनों अर्थ हैं, आ श्व थ, इसमें तीन अक्षर हैं, आ एक अलग शब्द है, श्व एक अलग, और थ अलग। और ये अश्वत्थ शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है। थ का मतलब होता है रहना, श्व थ, श्व माने कल तक जो रहता है उसको श्वत्थ बोलते हैं, थ माने रहना, स्था गति निवृत्त धातु में। और अ शब्द का अर्थ होता है नहीं, माने कल तक भी जिसकी स्थिति ना हो, जो कल तक रहे इसकी कोई गारंटी ना हो, कल तक जिसके अस्तित्व का कोई भरोसा ना हो, उसको अश्वत्थ बोलते हैं। आप जितना भी दुनिया के पदार्थ दिखते देखते हैं ना, क्या कल तक भरोसा है क्या किसी भी चीज का? कल तक की बात छोड़ो, अगले पल का भी भरोसा नहीं है। कल तक तो बहुत लंबा, अगले पल का भी भरोसा नहीं है। आदमी बोलता है भैया तो अभी तक था, अभी मेरे से बात करके गया, अभी बात करके गया। ये तो भगवान अश्वत्थम प्राहु, ये अश्वत्थ। लेकिन लोग बोलते हैं अब हम ये है अश्वत्थ, मैंने कल तक भी जिसका भरोसा नहीं, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, मेरे इसको कभी मिटने वाला नहीं। हम लोग कैसे जीते हैं? हम लोग जो जीते हैं ना, कैसे जीते हैं? हम कितने साल तक रहने वाले हैं? 100 साल तक। हम ऐसे जीते हैं जैसे बहुत दिनों तक हम रहने वाले हो? हम ऐसे जीते हैं? कभी हम ऐसे जीते हैं क्या कि क्या भरोसा है? अच्छा, आपको मालूम पड़ जाए कि कल का कोई भरोसा नहीं, मालूम पड़ा राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित को मालूम पड़ा कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, उनको पता चल गया। और पता चलने के बाद क्या हुआ? फिर मालूम पड़ा कल का कोई भरोसा नहीं, मालूम पड़ा 7वें दिन के बाद अस्तित्व नहीं है, रहना ही नहीं है। और उनके जीवन में कितना बदलाव आया, वैराग्य, पूर्ण वैराग्य। ये क्षणिकत्व का बोध हमें वैराग्य में ले जाते हैं, ये मृत्यु का बोध हमें वैराग्य में ले जाते हैं। मालूम पड़ गया 7 दिन के बाद तो रहना ही नहीं है। अब वो यदि नास्तिक होते तो सोचते कि चलो ज्यादा से ज्यादा खा ले पी ले, 7 दिन भोग विलास करें। ये नास्तिक आदमी होगा तो सोचेगा ज्यादा, चलो 7 ही दिन तो जीना है, आप जी लो, भरपेट खाओ, घूमो फिरो, आनंद मनाओ। लेकिन नहीं नहीं, वो जीना नहीं है, वो जीना नहीं है। अब ऐसा जीना है कि जब आप किसी की जरूरत ही न पड़े, अब जीने की सार्थकता हो, वैराग्य हो। और वैराग्य ऐसा क्षण नारायण, ऐसा बोध, मृत्यु बोध वैराग्य में ले गया, और सर्वस्व का परित्याग कर राजा परीक्षित गंगा किनारे जाके बैठ गए। और 7 दिन तक कुछ खाया कि नहीं, मरना है। अखंडानंद जी महाराज जी को भी मालूम, परम पूज्य महाराज श्री को मालूम था जल्दी मरना, वैराग्य हुआ। उड़िया बाबा जी महाराज जी के लिए भी कहा जाता था कि ये 32 साल तक ही जिएगा। आप जिसको मालूम हो कि 32 साल के बाद मुझे मरना है और शास्त्र पर ज्योतिष पर भरोसा है, आप उस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य होगा कि ना, आप कल्पना कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ना, यही तो उन्हें महात्मा बनाती है, यही बातें उनको वैराग्य में ले जाती है। एक कोई लाला बाबू थे कलकत्ता में, बड़े संपन्न, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, साधु संतों की खूब सेवा, जो भी साधु आता वो सेवा करते थे। उन्होंने एक नौकर रखा था और उस नौकर का काम कुछ नहीं, सुबह 4 बजे उठाने का। वो नौकर आके बोल देता, बाबूजी समय हो गए उठो, समय हो गए उठो। दरवाजा खटखटाता, बाबा जी उठते और स्नान करते हैं, फिर पूजा पाठ चलता। वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। ऐसे प्रतिदिन के क्रम से उस नौकर ने सुबह एक दिन आके बोला, बाबूजी समय हो गए। आंख खुली और नारायण ऐसी आंख खुली कि फिर कभी बंद नहीं हुई। और उन्हें कहा, अच्छा बोले समय हो गया, मेरा समय हो गया। बोले मेरा समय हो गया। अपने बच्चों को उन्होंने बोला कि भैया मेरा समय हो गया। सारे बच्चों को बोला, तुमको जो संपत्ति मुझे देना है दे दो। बच्चों ने बोला, बाबूजी आप ये क्यों क्या बोल रहे हैं, सारी संपत्ति तो आपकी है। बोले ऐसा नहीं, बोलने का नहीं, सीधा बंटवारा करो, मेरे हिस्से का बंटवारा। और उन्होंने नारायण बंटवारा किया और उस सारी संपत्ति को लेकर वृंदावन पहुंच गए। वहां एक मंदिर है, लाला बाबू का मंदिर। वैराग्य हो गया एक शब्द, और ऐसा वैराग्य, समय हो गया मेरा समय। उन्होंने दोनों अर्थ लगा ले, विवेक अंदर का जगा और ऐसा अर्थ प्रकट हुआ वहां कि मेरा समय हो गया, क्या जीवन का क्या भरोसा है। और दूसरा अर्थ, भैया तुम्हारे बीच में रहने का समय खत्म हो गया है, आप तुम्हारे बीच में कब तक रहूं, अब राम राम। और उन्होंने लाला बाबू का मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर है, बहुत बड़ा कैंपस है वहां, और पाषाण का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर, और संपूर्ण जीवन वहां सेवा, भगवान की सेवा, संतों की सेवा। और नारायण अंत में उन्होंने वसीयत लिखी, बड़ी अद्भुत। ये वैराग्य जो है ना, बहुत अद्भुत चीज। आप कुछ भी कहो, आप कितने भी धन ऐश्वर्य में रहो, वैराग्य के बिना ज्ञान, वैराग्य के बिना आनंद संभव नहीं। साधु जीवन तो वैराग्य के बिना संभव ही नहीं। अंत में उन्होंने लिखा वसीयत में, आदमी वसीयत लिखता है ना तो अपने शरीर के लिए भी लिखता है, मरने के बाद इत्र से स्नान कराओ, चंदन की लकड़ी में जलाओ, बहुत बड़ी समाधि बनाओ, ऐसा नाम लिखो, ये करो। लेकिन वैराग्य वहां, अरे मिट्टी का ढेर है, मिट्टी में मिला दो, और क्या है इसमें। ऐसा वैराग्य जीवन में भी, शरीर के प्रति जिसका वैराग्य हो, मरने के बाद शरीर के प्रति आसक्ति बनेगी क्या। और बात भी सत्य है, इस शरीर का क्या, इस शरीर का क्या। बहुत ध्यान दे के आप शरीर को देखना, ये बातें जो शास्त्र कहता है ना, ये आपको निराश हताश होने के लिए नहीं कहता है, अथवा इस शरीर को छोड़ देना, भोजन मत कराना, इसलिए नहीं कहता शास्त्र। आपको इसलिए कहता है कि आपका विवेक जगे, इसके प्रति जो सत्यत्व बोध है, इस शरीर को आधार बनाकर, अपने नाम का आधार बनाकर, नाम के प्रति भी आदमी की बहुत आसक्ति होती है। आखिर नाम किसका है, अब ये ग्रीष नाम किसका है, आत्मा का है, जीवात्मा का है, कि इस तन का है। आप हमेशा कम से कम जीवात्मा है, आत्मा का तो कोई पता नहीं है, लेकिन जीवात्मा का तो पता है ना, और हमेशा जीवात्मा के साथ हम हैं। तो ये जीवात्मा का नाम नहीं है ये। जीव तो अनेकों शरीर धारण करता है, अनेकों शरीर धारण करता है, और अनेकों शरीरों में अनेकों नाम थे, अनेकों परिचय थे। कितने परिचय रहे होंगे, यदि गधे का शरीर मिला तो गधे का परिचय, और बैल के शरीर में गए तो बैल ही हमारा परिचय, और मनुष्य के शरीर में आए तो मनुष्य हमारा परिचय। और इस समय हम सोचते हैं अमुक नाम वाले हैं, लेकिन नारायण ये नाम तो तन का है, तन का, तन का नाम के प्रति आग्रह या आसक्ति जन्य है, तन के प्रति आग्रह आसक्ति जन्य है। और जहां वर्तमान में ही शरीर के प्रति वैराग्य बोध हो, मालूम है ये शरीर का क्या भरोसा, सचमुच नारायण ये विवेक है, विवेक है। आज उन्होंने कहा लाला बाबू ने कि शरीर की कोई सेवा नहीं होगी, उन्होंने कहा कि शरीर को बहुत सम्मान पूर्वक विमान में बैठा करके मत ले जाना, बोले उन्होंने कहा कि एक ऊंट मंगाया जाए और ऊंट मंगा करके ऊंट के पीछे मेरे पैर में रस्सी बांधकर ऊंट को हाँकते हुए ले जाना बोले स्मशान, और ये सारा शरीर मिट्टी में व्रज रज में लोटपोट होते हुए, बोले क्या इसका व्रज में मिला दू शरीर को, और वो भी टांग बांध करके उठा करके नहीं, बड़ा सम्मान बैंड बाजे, अरे कुछ नहीं इसको टांग बांध के, बोले तुम ले जाओगे तो तुमको वो बोझ होगा, इतना सम्मान ही शरीर को कंधे पर ले जाओगे, अरे बोले नहीं इसको तो टांग पकड़ के खींच के बोलते हैं ना डाल दो, ऐसा बोले ये वैराग्य, ऐसा वैराग्य उनके मन में आया और वो वैराग्य उनका जीवन बन गया। और वो एक शब्द था केवल, उनको मालूम पड़ा कि समय हो गया है, मालूम पड़ा क्षणिकत्व का बोध, ये जो बोध है ना ये क्षणिकत्व का बोध है। बौद्धों ने कहा कि भैया ये सारा संसार तो क्षणिक है, अपने यहां नव्य न्याय में क्षणिकत्व की परिभाषा है, तृतीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व, वो कहते कि वस्तु पहले क्षण में रहती है, उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण रहती है और तीसरे क्षण में मिटती है, ये क्षणिकत्व की परिभाषा की। आप देखना ही शरीर के अंदर आपका जो शरीर है ना प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण हजारों कोशिकाएं आपकी ये खत्म होती जा रही, एक तरफ खत्म होती जा रही दूसरी तरफ बनती जा रही है। आपका शरीर यदि यंत्र में डाल के अपने शरीर को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है, पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में रहा और तीसरे क्षण में नष्ट हुआ। ये क्षणिकत्व की परिभाषा नव्य न्याय की दृष्टि से। बौद्धों ने कहा ये तो बहुत लंबी बात हो गई, ये पदार्थों के अस्तित्व की बहुत लंबी बात हो गई, पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण रहा और तीसरे क्षण मरा। बौद्धों ने कहा कि बात रहने की जमती नहीं है, बौद्ध लोग हमसे भी आगे निकल गए। बौद्धों ने कहा कि यहां रहना है ही नहीं, यहां तो केवल पैदा होना और मरना है, यहां केवल रहना, यहां केवल पैदा होना और मरना है, रहना नहीं है। तो उन्होंने क्षणिकत्व की परिभाषा दी, द्वितीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व, वस्तु पहले क्षण पैदा होती है और दूसरे क्षण मर जाती है। और ये बौद्धों की बात थोड़ी ज्यादा गहरी मालूम पड़ती है। आप कभी देखना आपके सामने कितने काल है, आप गणन करते हैं गिनती करते हैं तो तीन काल मालूम पड़ते हैं, अतीत वर्तमान और भविष्य। आप जिसमें रहते हैं वर्तमान काल है, जो बीत गया होता है वह अतीत काल भूतकाल, और जो आने वाला काल है भविष्य काल। लेकिन आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो काल केवल दो ही हैं, एक काल बीता हुआ और दूसरा आने वाला, और वर्तमान क्या है? आप वर्तमान इतना बोलो उतना भी वर्तमान नहीं है। अच्छा आप भगवान का नाम लो वर्तमान में, आप किसी भी भगवान का नाम वर्तमान में लो, आप राम जी का नाम लो वर्तमान में राम, आप जब रा बोलोगे ना रा में जो आ है आ तक पहुंचते पहुंचते आपका रा क्या हो गया, अतीत हो गया, और राम म तक पहुंचे और रा अतीत हो गया। आप एक शब्द भी वर्तमान में नहीं बोल सकते, आप बोलते बोलते वो क्रिया अतीत की हो जाती है, अभी मैं बोलता जा रहा हूं और बोलते बोलते मेरा बोलना अतीत होता जा रहा है, मेरा बोलना भूतकाल में जा रहा है जितना मैं, इसलिए कहते वो लकीर है वर्तमान जिसको आप बोलते हैं, भविष्य भविष्य और अतीत की जो संधि रेखा बिल्कुल पतली सी, बोले वो वर्तमान, इसलिए वर्तमान का कोई अस्तित्व मालूम ही नहीं पड़ता है। वर्तमान का अस्तित्व मालूम ही नहीं पड़ता है। अपना हमारा शरीर है, हमारा शरीर वैसे ही है। आप दीपक ज्योति का दृष्टांत देता है शास्त्र। आप नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान करने के लिए। आप गंगा जी में नहाओगे कि नहीं? आप जिस गंगा जी में पैर रखने के लिए जाएंगे, वो गंगा जी तो गंगा जी होगी नहीं, वो तो चली गई। आप उस गंगा में कभी नहीं नहाओ, उसके जैसी दूसरी है। हम उसको बोल रहे हैं वही गंगा है, लेकिन वो गंगा नहीं है, वो तो बह गई है, बह गई है। अच्छा, आप जिसको छूना चाह रहे हैं, आप उसको छूते हैं कि दूसरे को छूते हैं? आप वहां बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस शरीर से भगवान के ऊपर, भागवत के ऊपर मैं पुष्पहार चढ़ाऊं, तो आपका जो तन कुर्सी पर बैठा है, क्या वो तन कभी इस भगवान के ऊपर माला चढ़ा पाएगा? अरे वहां से यहां आते आते आपका शरीर बदल गया, लाखों करोड़ों कोशिकाएं इसकी मिट गई, अपने को लगता वहीं। ये भ्रम है, हम जो पैदा बचपन में थे वही हैं। क्या सचमुच आपका तन वही है? आपकी जीवात्मा है इसके अंदर, उसमें कोई बदलाव नहीं। आत्मा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन तन कितना बदल। आप बच्चे थे, कैसे थे? परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज जी के पास पाल ब्रिंटन आए, उन्होंने सीक्रेट ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी और उसी के संदर्भ में वो चाहते थे कि बाबा कुछ उनको चमत्कार दिखा दे। उन्होंने कहा, बाबा मैं पुस्तक लिख रहा हूं और आप कुछ चमत्कार दिखा देना मुझे। बाबा ने कहा, बेटा एक जल की छोटी सी बूंद जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी देखा नहीं जा सकता है, और उस बूंद से ये तन बना, कितनी छोटी सी बूंद और उससे ये तन बना मां के गर्भ में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा और वो बाहर आया और बाहर आके चलने फिरने लगा। बोले, इससे ज्यादा कोई आश्चर्य हो सकता है? बोले, इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है? कितने छोटे हम थे और आज इतने बड़े बने, चलने लगा, फिरने लगा, हंसने लगा, खेलने लगा। बाबा ने कहा कि इससे बड़ा कोई दुनिया में चमत्कार नहीं हो सकता। बोले, कौन सा चमत्कार दिखाऊं मैं? आप कितने छोटे थे और वो चीज बढ़ती 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 बढ़ती, कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा परिवर्तन है। और ये परिवर्तन नारायण, यही प्रथम क्षण में वस्तु का निर्माण और द्वितीय क्षण में उसका विनाश। इसलिए वर्तमान नाम की कोई चीज नहीं है, वर्तमान काल भी कोई चीज नहीं है। जो भी है वो भविष्य और जो भी है वो अतीत है, और उसके बाद भी हम उस वर्तमान को पकड़ना चाह रहे हैं। जो है ही नहीं है उसको हम पकड़ना चाह रहे, दुख तो इसी बात का है। वस्तु है ही नहीं, स्थिति है ही नहीं, पैदा होना और मिटना है, पैदा होना और मिटना है, और वो बीच का अस्तित्व हम कल्पना कर रहे हैं। वस्तु है, वेदांत कहता वस्तु है ही नहीं है, वस्तु है ही नहीं, उसका वर्तमान ही नहीं, और जो है ही नहीं उसको हम पकड़ रहे हैं, उसके अस्तित्व को पकड़ रहे हैं। जो है ही नहीं उस अस्तित्व को पकड़ रहे हैं, और यही तो हमारे मन का मुंह है, यही तो हमारा भ्रम है। जो है ही नहीं उसको हम पकड़ रहे हैं। आज बालक नचिकेता यही करे स्वभाव शब्द के द्वारा यही कहना चाह रहे हैं कि आप जिस वस्तु को मुझे देना चाहते हो ना, उसका अस्तित्व कहां है? बिना अस्तित्व की चीज आप मुझे दे रहे हैं, और उन बिना अस्तित्व की चीज मैं लूं तो क्या उसको लेना और देना बोलते हैं क्या? बहुत गहरी बात बोली उन्होंने, है ना? और नारायणी वेदांत का सर्वोच्च सिद्धांत है ये, सर्वोच्च सिद्धांत माने वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। और ये पता जब हमको चलता है ना, तभी हमारी ब्रह्मज्ञान की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ यात्रा शुरू हो जाती। वस्तु का अस्तित्व मालूम पड़े तो हम वस्तु के अस्तित्व में भटक जाएंगे, वहां अटक जाएंगे। लेकिन नारायण यहां वस्तु का अस्तित्व ही नहीं, और इतना बोध उनके मन में है, अब वो उस वस्तु का जो दृष्टा, उस वस्तु का जो अधिष्ठान आत्मा है, अब वहां की यात्रा जरूर होगी। उन्होंने कहा, मर्त्यस्य यद अंतक सर्वेन्द्रियाणाम जयंत तेज, वस्तु के वास्तविक स्वभाव का प्रतिपादन किया, और अगले श्लोक में हमारे इंद्रियों के स्वभाव का वर्णन करेंगे। इसको हम कल करेंगे, आज यहीं पर विराम देंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।